ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओम नमो
ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठपतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशम् प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो कल विशेषकर दीक्षा प्रार्थियों के लिए श्री गोविंद दत्त प्रभु कुछ गुरु तत्व और दीक्षा का विषय के बारे में आपको बताए, और कल दीक्षा अनुष्ठान होगा यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और अनुमति हो। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा वैसे है, परंतु कृष्ण भगवान क्या करते हैं और किस लिए करते हैं हम सब कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन ऐसा हम प्लानिंग करते हैं ना कि कल दीक्षा अनुष्ठान होगा। इसलिए आज भी वो गुरु तत्व के बारे में कुछ कहना उचित। एक बार बोल दिया था, एक बार तो पूरा नहीं हो। गुरु तत्व बहुत महान विषय है, विशाल विषय। गुरु शब्द भगवान कृष्ण का एक नाम है, और भगवान श्री कृष्ण के गुण राशि अपार असीम है। गुरु भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। हम भगवान कृष्ण से बहुत दूर है, और भगवान कृष्ण बहुत निकट से भी है। भगवान कृष्ण सबके हृदय में है, नहीं अंतर्यामी भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जीवन तिष्ठति ब्रह्मयं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। ईश्वर कृष्ण सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में सब जीव का भ्रमण कर 84 लाख की जीव जाति में भौतिक संसार में भ्रमण कर पूरा निरीक्षण करते भगवान कृष्ण। तो ऐसे भगवान कृष्ण बहुत निकट में है सबके। कुरान में भी ऐसे बोलते हैं, नहीं प्रसिद्ध वाक्य, ही इज क्लोजर देन योर जुगुलर वेन। कैसे बोलते, यू हर्ड दैट, अल्लाह इज क्लोजर देन योर जुगुलर वेन। कैसे बोलना है इन हिंदी, जुगुलर वेन कैसे बोलते हैं हिंदी में, मुझे मालूम नहीं। ऐसे एक ही बात है। और दूसरे दृष्टिकोण से, हाँ, भगवान हमारे बहुत निकट है, परंतु हम भगवान से बहुत दूर है। क्योंकि कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार दुख। हम भौतिक जगत संसार में आया है कृष्ण को भूलने के लिए। तो भगवान कृष्ण शास्त्र में कहा गया है कि भगवान कृष्ण punyashali bhakti mai jivon ke samaksh hote guru ke roop mein. Guru Krishna Bhagavan ke pratinidhi hai. To kaise hum pehchan sakte hain guru kaun hai? Shastra mein bataya gaya hai ki guru ki puja karna hai, guru ki seva karna hai. Guru Bhagavan jaise sanman dena hai. तो ऐसे वचन है तो बहुत ढोंगे होंगे ना जो हाँ मैं खुद को गुरु बनाकर दूसरों को शोषण करता हूँ ऐसे ऐसे होते हैं ना बहवो गुरु वो संति शिष्य वित्तपहार का दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहार का महादेव इनकी पत्नी पार्वती को बताया कि ऐसे गुरु बहुत है जो बहुत निपुण है उनके शिष्यों के वित्त पैसा धन लूटना और दुर्लभ है सद्गुरु जो निपुण है शिष्यों का संताप मिटाना. तो सद्गुरु कैसे पहचान करना है शास्त्र में बताया गया कि ब्रह्मन शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् दो मुख्य लक्षण है सद्गुरु के. एक है कि शास्त्र वाणी में केवल अध्ययन नहीं किया तो उनकी चेतना तो पूरा उसमें तन्मय है. हम दो अंकों से सब कुछ देखते हैं. तो आध्यात्मिक दृष्टि है शास्त्र ज्ञान के द्वारा शास्त्र चक्षु के द्वारा. जैसे एक उदाहरण है कि एक सुंदरी नारी का रूप से सब पुरुष आकृष्ट होते और देखते हैं वो ऐसा रूप में उस रूप को मैं भोग कर सकता हूँ. ये भौतिक दृष्टि है और आध्यात्मिक दृष्टि है कि ये एक जीव है कि कर्म फल के अनुसार ऐसे रूप धारण करते हैं. तो माया संसार में है रूपवती होते हुए भी तो दुख माया वस्त्र में है. तो एक है भौतिक दृष्टि वो मेरा भोगने के लिए और दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टि रूपवती नारी या वृद्ध नारी जो भी हो सब अज्ञान में है इसलिए मेरा कर्तव्य है उसको शोषण करने का प्रयास नहीं करना ज्ञान प्रदान करना कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान करना. तो इसी प्रकार गुरु का प्रथम लक्षण है बहुत लक्षण है गुरु के शुद्ध भक्तों में एक है कि सब कुछ देखते हैं साधारण चक्षु के द्वारा नहीं है वो साधारण बुद्धि से नहीं है तो शास्त्र ज्ञान से और ब्रह्मण्युपशम आश्रय तो पूरी तरह जो आश्रय लिया है ब्रह्म में. ब्रह्म का मतलब कृष्ण परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम अम्बा वो ही गुरु है योग्य है गुरु है. ब्रह्मण्युपशम आश्रय उप आश्रय हम कैसे आश्रय लेते हैं कृष्ण के चरण में हम कृष्ण से दूर हैं कैसे हम आश्रय ले सकते हैं परंपरा की प्रथा में से हम आश्रय ले सकते हैं. अगर कोई आते हैं बोलते मैं गुरु हूँ तो आपकी गुरु कौन है नहीं नहीं मैं गुरु हूँ वैसे अगर कोई गुरु नहीं है मैं गुरु हूँ तो वो तो गुरु नहीं है. गुरु का मुख्य लक्षण क्या है वो सत गुरु के आदर्श शिष्य और वो सद्गुरु जो एक आधार शिष्य आश्रित है वो गुरु के चरण पर, वे भी इनके गुरु के चरण आश्रय है। और कैसे गुरु आश्रय होते हैं? खाली बोलने से नहीं कि मैं दीक्षा ली चुकी, अभी मैं शिष्य हूँ। शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन ग्रहण करते, मतलब गुरु का आदेश पालन करते। तो इसी प्रकार गुरु तत्व विशाल तत्व है, बहुत महत्व पूर्ण तत्व है। हम दीक्षा लेने के पहले सब कुछ समझना संभव नहीं है। यदि हम दीक्षा लेने के पहले सब कुछ समझना चाहते हैं तो मृत्यु के पहले तो हम गुरु विषय का अंत तक नहीं पहुंचेंगे। तो श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की असीम कृपा से मैं अभी अवसर मिलता हूँ और गुरु से दीक्षा लेना। और वो श्रद्धा होने चाहिए कि ये व्यक्ति योग्य है मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, जिससे मैं ये दुर्लभ मानव जन्म सफल कर सकता हूँ भगवान कृष्ण की सेवा में। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। कितना है जीव ब्रह्मांड में? कितना? कितना? 84 लाख असंख्य। कितना है जीव ब्रह्मांड में? 84 लाख नहीं, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, असंख्य जीव है। तो असंख्य जीवों में एक दो इतना भाग्यशाली होते कि कृष्ण की कृपा से गुरु से भक्ति लता बीज प्राप्त करते हैं। वो भक्ति लता बीज क्या है? वो ज्ञान जिससे, ज्ञान और प्रेरणा जिससे हम भक्ति के सब विधि विधान पालन कर सकते, मार्गदर्शन। तो गुरु के क्या क्या लक्षण है जिससे हम पहचान कर सकते, इसके बारे में बहुत कथा है शास्त्र में। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद इनके उपदेशामृत नामक पुस्तिका में गुरु का लक्षणों इस प्रकार वर्णन किया है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर प्रस्तो वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वम अपीमं पृथिवीं सशिष्यात्। वाचो वेगम, हम हमेशा कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। वो बात जो हम कहते हैं यदि कृष्ण संबंधित नहीं है वो मायक है। बात बोलने से हम गहरा संसार में प्रवेश कर सकते हैं, या बात बोलने से हम संसार से मुक्त हो सकते हैं और कृष्ण के पास जा सकते हैं। कुछ साधु है जो मुनि व्रत लेते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बंद करते। उनका विचार है कि बात बोलने से हम माया में प्रवेश करते, तो अच्छा हो बंद कर। परंतु शास्त्र का निर्देश है कीर्तनीय सदा हरि ही, भगवान हरि का कीर्तन सदैव करने चाहिए। तो यदि हम मौन व्रत पालन करेंगे तो कैसे हम कृष्ण का गुणगान करेंगे? अच्छा हो यदि हम कृष्ण का गुण गान करने में कुछ भी रुचि नहीं है तो अच्छा हो हम मौन व्रत पालन करेंगे, क्योंकि यदि हम कृष्ण के गुणगान नहीं करेंगे हम भौतिक चर्चा करेंगे। जैसे वर्तमान काल में भारत में लगते हैं आप ज्यादातर भारत के हैं ना, तो क्या बात चलते हैं, चुनाव चुनाव चुनाव, मोदी राहुल ये सब बात चलते हैं। तो ये सब माया की व्यवस्था है जिससे हम कृष्ण कथा नहीं कहेंगे। हम कौन होंगे अगले प्रधानमंत्री, कृष्ण को बनाना चाहिए या कृष्ण की प्रतिनिधि? तो ये एक उदाहरण है, और दूसरे समय भी क्या वो पेपर में आप देखते हैं क्या, यहाँ पर आप पेपर नहीं मिलते इंडियन इंटरनेट पर मिलते, और आप सब ज़्यादातर लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि स्वप्न में भी पेपर नहीं पढ़ते। तो क्या वो अलग अलग चर्चा होती है ना, पॉलिटिक्स के बारे में और इकोनॉमी के बारे में, कुकिंग के बारे में, नारियों के लिए अलग अलग समाचार होते हैं। तो सब है क्या, वो सब प्रेरणा है किस, कृष्ण को भूलना। ये सब वाचवेग अर्थात कृष्ण की विस्मृति की चर्चा करने की प्रेरणा। इससे अच्छा हो श्रीमद् भागवत सारार्थम अश्वादो रसिकाय सह, श्रीमद् भागवत का सार अर्थ रसिक भक्तों की संगति में ही चर्चा करनी चाहिए, और उसका रस श्रीमद् भागवत में वो रस जो है उसका आस्वादन करना भक्तों के संग में। तो इसलिए ये आप, कोई है यहाँ पहली बार यहाँ है? नहीं, आप सब रेगुलरली आते हैं नहीं? आप सब ये सत्संग में आप बार बार आते हैं, किस लिए किस लिए? कुछ रस मिलते है? रस वो क्या है? भक्ति रस, भक्ति रस, उससे आप आते हैं भक्ति रस। वो भक्ति रस कैसे होते? कृष्ण कथा से, कृष्ण कीर्तन से भक्ति रस। तो भक्ति रस आते कृष्ण कथा कहने से। तो भक्ति साधना में वो अभ्यास है, वो सब कुछ जो हम कहते हैं वो कृष्ण संबंधित होगा। इसको वाचोवेगम बोलते, वाचोवेग मतलब वो वेग या वो इच्छा कुछ कहना। तो वो इच्छा कुछ कहना तो कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मन हमेशा चलते रहते हैं ना, नींद में भी, नींद में शरीर का विश्राम होते है, मन का विश्राम नहीं होते, सदैव चलते रहते, इससे स्वप्न होते हैं ना। और इसलिए बहुत से लोग तो नींद नहीं मिलते क्योंकि मन इतना चंचल रहता, इतना व्यस्त रहते कि तो बहुत थक होते हुए भी तो नींद नहीं आते। इसलिए बहुत लोग चाहते हैं वो साधु के पास जाकर आशीर्वाद मिलना चाहते, कैसे शांति मिलती मुझको बताए, शांति 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 कैसे मिलते। अशांति क्या है? वो मानसिक स्थिति है ना, तो मन में कितना चिंतन आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मन में चिंतन आता है। तो जिससे मन स्थिर होगा, ठंडा होगा, सवाय माना कृष्ण पदारविंद यो हो मन मना भव मद भक्त अनन्यास चिंतयंतु मम अनन्य चेत सतत। बार बार शास्त्र में बताया गया है कि हमारे सब चिंतन कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, फिर शांति अपने आप हम शांति मिलेगी। शांति के लिए दूसरा प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि हम मन को प्रशिक्षण देते हैं केवल कृष्ण के बारे में सोचें, तो अपने आप शांति और भक्ति और प्रेम मिलेगा। शांति तो तुच्छ बात है, शांति के ऊपर भक्ति और प्रेम बहुत महान है। तो मानस क्रोध अवेगम, क्रोध क्रोध क्रोध, ऐसा क्या क्यों मुझको तकलीफ देते हो, क्यों क्रोध हो है या दूसरों को दूसरे से गुस्सा है। और क्रोध का एक और प्रकार है, वो जैसे उब जाना, फ्रस्ट्रेटेड होना, जैसे कुछ सुसाइड करते, क्यों सुसाइड करते क्रोध से। हाँ, जो मैं चाहता था नहीं मिला, इसलिए खुद का गला काटने। हाँ, तो क्रोध वो स्वाभाविक, क्रोध अच्छा है या खराब है? खराब है। तो नृसिंहदेव तो सबसे बड़ा क्रोधी है ना, तो नृसिंहदेव क्या खराब है? हनुमान, सब हनुमान का नाम जानते नहीं, तो क्यों हम हनुमान की प्रशंसा करते हैं? क्योंकि क्रोध से लंका दहन किया है। हनुमान तो अभी तो राम नाम जपते है, तो पहले राम नाम जपने वाले बहुत है, सब साधु है, लेकिन उसलिए हम हनुमान की प्रशंसा नहीं करते। क्यों? कि हनुमान राम नाम जप करते, क्योंकि बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि रावण तो राम को अपराध किया। तो ऐसा क्रोध अच्छा है? क्रोध की कोई मुझको गाली दिया, मैं तुमको भी गाली देता हूं, वो क्रोध नरक का द्वार है। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। गीता में कृष्ण कहते काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार है, इसलिए तीनों छोड़ना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन को बताए, और गीता अर्जुन को बताने से भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित किया लड़ाई करने के लिए। तो शांत मन से लड़ाई करना है क्या? गुस्सा होना चाहिए ना? तो भगवान कृष्ण कहते क्रोध छोड़ना चाहिए और अर्जुन तुम लड़ाई करो। तो क्या बात है, वो क्रोध जो अपना विषय इंद्रिय सुख के लिए उसका हेतु से क्रोध होता है, वो नरक का एक द्वार है। और क्रोध जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होते वो उत्तम है। तो आप सब श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनते हैं? सुनते हैं? तो कितने बार प्रभुपाद बोलते हैं मूढ़ा, सुने मूढ़ा मूढ़ा, ये सब मूढ़ा है। क्यों प्रभुपाद ऐसे कहते हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग तो मूढ़ा है, बताना अच्छा है। अगर हम कहते हैं कि और ये सब मूर्ख लोग जो है, जो कृष्ण द्वेषी है, यदि हम रावण प्रशंसा करेंगे और नहीं कहेंगे कि वो मूढ़ा है, तो हम भी मूढ़ा हो जाएंगे, हम भी राक्षस रावण जैसे बन जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए, हाँ, गुरु से हम क्या सीखते हैं, क्या है सत्य, क्या है नित्य। यदि हम रावण को बताएंगे कि हाँ ओ परम संत, और यदि हम रावण के प्रति गुस्सा नहीं होते, तो हम भी रावण जैसे बन जाएंगे। तो स्पष्ट वचन बोलना चाहिए। तो रावण चले गया बहुत दिन पहले, और आजकल रावण के छोटे भाई बहुत है ना। तो मानस क्रोध वेगम जीव देखा ना, ऐसे अपमान होता है, ये जीव है ना। भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में क्या बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल चरेंद्र अतः काल जीवे शरीर अविद्या का जाल जैसे है, और जड़ इंद्रिय काल मृत्यु जैसे है, और कैसे हम संसार जाल में फंस गए हैं। जीवा लालस जय इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे चैतावनी देते हैं इनके सब भक्तों को कि जीवा लालच है, लालच से, लालच वो अलग अलग सुस्वादु भोजन खाने के लिए जो इधर उधर जाते हैं। तो जीव का लालच से उधर उपस्थ पेट और लिंग का विषय सुख की इच्छा बढ़ते हैं, और इसी प्रकार हम संसार में फंस जाते हैं। तो हम अलग अलग चीजों कहेंगे, वो ही इच्छा से पाप होते हैं, क्योंकि सब कुछ जो यदि हम कुछ भोजन लेते हैं जो कृष्णा का प्रसाद नहीं है, तो वो ही पाप है, शाकाहार भी। और खास यदि हम मांस मत्स्य अंड वो सब खाते हैं, तो वो बड़ो पाप होते हैं। भारत में कम जो हिंदू है सब जानते हैं कि मांस पक्षण पाप होते हैं, नहीं सब जानते हैं, फिर भी सब करते हैं, सब नहीं, बहुत नहीं करते अभी तक, लेकिन बहुत बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? जानते ही वो ही पाप है, लेकिन करते हैं क्यों? स्वाद। और ऐसे नरक जाते हैं। इससे इसलिए जीव का वेग, जीव की इच्छा दमन करना चाहिए। कैसे संभव है? जीवे फले विषय सागर थर्म जीवे फले विषय सागर थर्म जीवा अति जीव अति लोभमती ठाके जैसा कठिन संग जीव का दमन करना कठिन है। कृष्ण भगवान हमको एक सुंदर उपाय दिया है, कृष्ण बड़ दयामय करी बारी जीवा जय सप्रसाद। तो भक्तों का संकल्प है कि कृष्ण प्रसाद के बिना हम और कुछ भोजन नहीं लगे। और ऐसे बहुत सरल उपाय है जीव को जीतना। जीवे बोले जीवा बैगम उदर 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 मतलब पेट। तो उदर वेग क्या है? वेग उदर वेग ये है कि प्रसाद लेता हूँ या भोजन लेता हूँ तो काफी हो, काफी हो, फिर भी और थोड़ा सा लेता हूँ और भी थोड़ा और भी थोड़ा और भी। वो उदर वेग है, इसलिए हमें जितना उचित लेना चाहिए, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। हम प्रसाद लेते हैं और एक प्रसाद कृष्ण सेवा है, कृष्ण प्रसाद तो इतने सा लेना चाहिए कि शरीर की पुष्टि होगी भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और फालतू उपवास वो भी नहीं करना चाहिए, 3 दिन खाली जाल पीना, उससे क्या लाभ होता। हमारा उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, यदि शरीर बहुत दुर्बल होते उपवास करने से तो क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। हम जन्माष्टमी दिन पर नृसिंह चतुर्दशी गौर पूर्णिमा कुछ दिन हम उपवास रखते, एकादशी दिन पर हम उपवास रखते हैं, या हम खाली फल फल ऐसे रखते। तो भक्ति जीवन में ज़्यादा उपवास करने का जरूरत नहीं है और ज़्यादा अतिरिक्त भोजन भी नहीं लेना चाहिए। उधर उपस्थ वेग, उपस्थ उपस्थ का मतलब लिंग, वो मैथुन इच्छा से, मैथुन करने की इच्छा से बाबा बंधन बहुत सख्त होते। उधर उपस्थ वेगम एतन वेगम यो विषहित धीर सार्वमपीमां पृथ्वीं सशिष्य। तो कौन गुरु है जो ये सब वाचो वेगम मनस ये सब नियंत्रण किया है, जो इंद्रियों के दास नहीं है, इंद्रिय के स्वामी है, गोस्वामी। आप सब सुन रहे हैं गोस्वामी शब्द, ये शब्द का अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के सेवक नहीं है। इंद्रियों के स्वामी इसका अर्थ है कि वो सब इंद्रियों भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रयोग करते हैं। तो शिष्य भी वैसे होना चाहिए। शिष्य तो क्यों शिष्य होते? जिससे मार्गदर्शन और शक्ति मिलेगी, जिससे वाचो वेगम मनस को ये सब वेग, वेग जो बोलते ये सब वेग नियंत्रण कर सकते। तो ऐसे ही सदगुरु के लक्षण है। सदगुरु तो भोग विलासी नहीं हो सकते, और सदगुरु तो शिष्यों को उपदेश नहीं देते हैं तो तुम भी भोग विलास करो, तुम कुछ योग व्यायाम करो जिससे शरीर चुष्ट होगा और ऐसे स्वस्थ अच्छी होगा, इंद्रिय सुख तर्पण करने के लिए। ऐसे सदगुरु ऐसे नहीं कहते। और गुरु तो व्यभिचारी नहीं है, संभव है क्या गुरु व्यभिचारी है? नहीं, गुरु शिक्षा देते हैं जिससे हम व्यभिचार की इच्छा से पूर्ण मुक्त होंगे। गुरु व्यभिचारी नहीं है और व्यापारी भी नहीं है। पूर्व काल में बहुत व्यभिचारी गुरु थे, आज एक नया ढंग के गुरु है व्यापारी गुरु। गुरु है कृष्ण के भक्त और सबको कहते हैं तो कृष्ण भक्ति करो भाई और सब नीचे, कृष्ण भक्ति करो भाई और सब निरार्थ है। और स्वयं का जीवन में ऐसे आचरण करते जिससे हम प्रेरणा मिलते और उपदेश मिलते कृष्ण भक्ति करने के लिए. So I should speak for some minutes in English also. Who knows English and not Hindi? Please raise your hand. Just a few.